सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, व्यर्थ न जाए जीवन अपना। पल पल को आबाद कर, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर।
शांति हम सबके बीच में अवतरित आत्मा के रूप में आदरणीय राजयोगिनी शीलू दीदी विराजमान है। हम सभी उनके आगमन में एक हाथ की ताली से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आदरणीय शीलू दीदी को हम सभी ब्रह्मावत भली भांति जानते हैं कि आप हर की पौड़ी के नाम से प्यारे बाबा की अनन्य रत्न हैं। आपने राजयोग शिविर का विशेष प्रशिक्षण तैयार कर अनेक आत्माओं की ज्योत प्रभु मिलन से जागृत की है। आप राजयोग शिविर की संचालिका हैं। राजयोगा एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन शिक्षा प्रभाग की आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं। टीवी खोलते ही बाबा नजर आए, उस वरदान को भी सर्वप्रथम आपने ही अलंकारित किया। आप सबको याद हो जी टीवी, आस्था चैनल और जागरण पर, सोनी टीवी इत्यादि पर सर्वप्रथम आपके ही जीवन मूल्यों के नाम से प्रसारण होते रहे हैं। वर्तमान समय जो हमारा पीस ऑफ माइंड चैनल है, उस पर आपकी विभिन्न विषयों पर वार्ताएं, चिंतन, चर्चाएं आती रहती हैं। आप हिंदी, अंग्रेजी तथा सिंधी भाषा की प्रखर वक्ता हैं। आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का कुशल संचालन, कुशल निर्देशन और कुशल वक्ता के रूप में जानी जाती हैं। आपने पांचों महाद्वीपों में लगभग 60 देशों से भी अधिक यात्राएं करके अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का परचम विश्व भर में विश्व सेवाधारी के रूप में फहराया है। आप 1969 में प्यारे बाबा के मधुबन घर में रहकर विश्व सेवाएं दे रही हैं, और उस समय आपने विज्ञान के विषय में स्नातोत्तर अर्थात बीएससी की डिग्री प्राप्त की। ऐसी आध्यात्म की प्रणेता और विज्ञान की ज्ञाता महा सरस्वती का हम अपने बीच में आज वेस्ट बंद करें और वेट कम करें विषय पर हम अनुभव युक्त सारगर्भित वरदानी महावाक्य सुनेंगे आदरणीय राजयोगिनी शीलू दीदी से। ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। जब बाबा के बच्चे आपस में मिलते हैं तो सबसे पहले दृष्टि द्वारा मिलते हैं, आत्मा आत्मा भाई भाई की दृष्टि से मिलते हैं, और फिर ओम शांति कहते हैं। आत्मा को देखा, आत्मा के स्वधर्म को पहचाना और उसी ओम शांति के मंत्र में समा गए। तो आप सभी बाबा के बहुत लाडले प्यारे मीठे बच्चे बेहद बाप के घर में आए हो बट्टी करने के लिए। बट्टी में क्या करना होता है? तपना होता है। बट्टी में शुद्ध होना होता है, परिवर्तित होना होता है। तो आप सब बट्टी में रहकर अपने आप को तपा भी रहे हो, शुद्ध भी बना रहे हो, परिवर्तन भी करते जा रहे हो। तो आज आपका विषय हमने चुना, वेस्ट कम करो और वेस्ट नहीं करो और वेट कम करो। जिसको अगर एक डायरेक्ट अप्रोच दें तो बचत करो और हल्के बनो। वेस्ट नहीं करो माना बचत करो। जो चीज अगर वेस्ट नहीं हुई माना बच गई। और वेट कम करो माना हल्के बनो। तो बाबा हम बच्चों को ये इतनी बड़ी श्रीमत क्यों देते हैं? कभी कभी बाबा कहते मैं बाबा बच्चों को राय देते हैं, कभी बाबा कहते हैं बच्चों को सलाह देते हैं, कभी बच्चों को ऑर्डर करते हैं, कभी बच्चों को के लिए ऑर्डिनेंस भी निकालते हैं। तो श्रीमत के अंतर्गत ये सब कुछ आ जाता है बच्चों के कल्याण के लिए। तो कैसे हम वेट कम करें यानी हल्के बने, कैसे हम वेस्ट नहीं करें या बचत करें, उसको आज हम समझेंगे। कल तो बाबा की मुरली सुनी ना सभी ने, सभी ने सुनी कि किन्होंने नहीं भी सुनी? जिन्होंने नहीं सुनी हाथ उठाओ। अच्छा, संडे को पहुंचे हैं तो संडे की मुरली नहीं सुनी? संडे कल नहीं, परसों, कल था, आज कौन सा दिन है? आज सोमवार है, तो हाँ कल की थी। तो क्यों बाबा हमें कहते हैं बचत करो? पहले उसके लिए क्या बचत करो? दुनिया में जिसको संपत्ति कहते हैं उसकी तो बचत करनी है, वो तो दुनिया में भी कहते हैं, क्योंकि संपत्ति की बचत बहुत जरूरी है, धन की बचत बहुत जरूरी है। कारण कि आई वेल के समय जब आवश्यकता हो और उस समय आपके पास कुछ भी बचत ना हो तो बहुत धोखा खा सकते हैं। भीख मांगनी पड़े, मांगना पड़ेगा, दूसरों से उधार लेना पड़ेगा, क्योंकि अपनी बचत कुछ भी नहीं है। तो दुनिया में तो ये कहते ही हैं, इसीलिए सरकार भी इसमें कहती रहती है, बचत स्कीम बनाती रहती है, सेविंग स्कीम बनाती रहती है, सेविंग अकाउंट खोलते रहते हैं, ताकि हम उसमें अपना जो बचत है वो डालते जाएं, डालते जाएं, क्योंकि कभी भी जरूरत पड़ेगी। तो दुनिया में तो केवल धन के लिए कहते हैं, पर बाबा हम बच्चों को कौन सी संपत्ति के लिए कहते हैं? हमारी बहुत बहुत संपत्ति है। सबसे बड़ी संपत्ति है हमारी समय की संपत्ति। समय, श्वास, संकल्प, और वो संपत्ति भी जरूर वाणी भी हमारी संपत्ति है, शक्ति भी संपत्ति है, जो भी जीवन की चीजें हैं वो सब हमारी संपत्ति है। और इन सब को हम बहुत ही मूल्य देते हैं। समय के लिए कहा जाता है कि समय एक बार गया वापस आता है, जैसे कमान से तीर गया वापस आता है नहीं। तो समय भी उसी अनुसार उसी प्रकार है, जो घड़ी बीत गई वह बीत गई, वापस नहीं आएगी। हाँ आएगी जरूर, कल्प के बाद आएगी ना, इस कल्प में तो नहीं आएगी। वैसे भी जो भी दृश्य होते हैं, जो कुछ भी होता है, वो कल्प में एक ही बार होता है। वही दृश्य वैसा ही रूप फिर उसी कल्प में नहीं होगा, कुछ न कुछ परिवर्तित हो ही जाएगा। तो इसीलिए हर घड़ी आपकी संपत्ति है, उसको वेस्ट मत कमाओ, इसकी बचत करो। तो बचत तो वैसे कैसे हो सकती है, क्योंकि वो तो बीत जाएगा समय, समय बीत गया वापस तो आएगा नहीं, तो बचत कैसे करेंगे। तो इसीलिए बचत की बजाय दूसरा शब्द बाबा यूज करते हैं, सफल करो। सफल करो और सफलता को पाओ, आपकी एक घड़ी भी व्यर्थ नहीं जाए। एक बार दादी जानकी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी और अखबार वाले आ गए थे और दादी जी भी बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर आ गए, बिल्कुल। तो अखबार वालों ने एक प्रश्न किया कि दादी आप घड़ी तो पहनते नहीं हैं, तो आप एकदम टाइम पर कैसे आ गए। नहीं तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते ना, कहेंगे 5 बजे और आएंगे 5:30 बजे, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। पर दादी बिल्कुल एक्यूरेट, जो टाइम दिया था उसी टाइम पर पहुंच गई। तो दादी आप घड़ी तो पहनते नहीं हैं, तो आप एकदम राइट टाइम कैसे आ गए, कि घड़ी भी नहीं देखी, देखती नहीं घड़ी, पर आ गई टाइम पर। नहीं तो हर एक व्यक्ति घड़ी देखता रहता, जब देखो घड़ी देख रहा है, ट्रेन में जाओ, बस में जाओ, प्लेन में जाओ, तो भाई घड़ी देखता रहता है, जब पता नहीं क्या है मिलता है घड़ी से, पता है ना कितने बजे। तो दादी ने बहुत सुंदर शब्द कहे, दादी ने कहा मैं हर घड़ी अपनी सफल करती हूं, तो घड़ी पहनने की क्या जरूरत है, समझ गए। हर घड़ी मैं सफल करती हूं, तो जब हर घड़ी माना हर सेकेंड सफल ही हो रहा है, तो घड़ी देखना माना अभी देख रहे, अभी 10 मिनट पड़े हैं, चलो कोई बात नहीं, अभी 10 मिनट पड़े, माना अब इंतजार कर रहे हैं 10 मिनट। लेकिन हर घड़ी सफल ही करे, तो जब भी हम दादी के पास जाते थे ना, दादी कभी भी ऐसे नहीं बैठी होती है, या तो कुछ पढ़ रही होती है, या तो कुछ लिख रही होती है, या तो किससे मिल रही होती है, ऐसे नहीं बस ऐसे ही बैठी है। या अगर ऐसे भी बैठी है तो फालतू नहीं, बाबा की याद में बैठी है। तो कैसे हर घड़ी दादी सफल कर रही है। तो हम अपने आप से पूछें कि हमारी हर घड़ी सफल होती है। अगर हर घड़ी सफल होती है माना कि बचत हुई। जैसे भोजन के लिए कहते किसी चीज के, भाई चलो बच गया, तो इसका दूसरा रूप बना करके उसको यूज कर देंगे, तो क्या कहते हैं, सफल कर दिया। हाँ सफल हुआ, गया पेट में, गया उसको अच्छी और अच्छा रूप दे दिया, ऐसे कोई नहीं खा रहा था तो अच्छा रूप दिया, तो सफल हो गया। तो हर घड़ी सफल माना एक रूप है कि वेस्ट नहीं करना। तो हम अपने आप को देखें कि सफल हो रहा है, यानी कहीं वेस्ट तो नहीं जा रहा है। तो समय कैसे वेस्ट जाता है, गपशप में वेस्ट जाता है, इधर उधर की बातें करने में वेस्ट जाता है, हंसी मजाक में वेस्ट जाता है, बीती बातों में वेस्ट चला जाता है, आगे का बहुत सोचते हैं तो भी वेस्ट हो जाता है। अब जो बीत गया वो तो बीत गया, वो तो वापस नहीं आना इस कल्प में, पर याद करते रहेंगे, हाँ मैं जब जवान था तो ये करता था, वो करता था, वो करता था। या भविष्य की चिंता करते रहते हैं, बुरा हो जाऊंगा तो कौन मेरा ध्यान रखेगा, क्या होगा, कैसे होगा। अरे अभी क्यों सोचते हो अभी? हाँ इसका मतलब आप जैसे अभी बूढ़े हो गए हैं, हाँ बचत करो, आप अपनी शक्ति की बचत करो, पर सोचते ही नहीं रह जाओ, क्योंकि उसमें भी आपकी शक्ति व्यर्थ जा रही है। एक बहन का अनुभव सुनाती हूँ, तो वो दादी के पास आई, तो दादी जी ने उनसे पूछा, मधुबन में आई हो तो यहाँ अपना पुरुषार्थ ठीक कर रही हो, आपकी हर घड़ी सफल हो रही है, हर श्वास आपका सफल हो रहा है। तो दादी को कहती है, दादी यहाँ तो सब ठीक है, पर वापस जाऊंगी फिर क्या होगा मेरा, वापस जाऊंगी तो फिर क्या होगा मेरा, फिर वही चक्कर, वही यही सब झंझट, यही वही, यहाँ तो बहुत अच्छा है, तो मुझे वो चिंता है कि वापस जाऊंगी फिर वही ऐसे ही होगा। तो दादी ने कहा, अरे तुम यहाँ हो तो यहाँ तो आप शक्ति भरो ना, यहाँ है तो यहाँ बैठे वहां का सोच रही है क्या होगा क्या होगा क्या होगा, और यहाँ पर शक्ति नहीं भर रही है, तो वहां जब जाएगी फिर वैसे का वैसा होगा। पर अगर यहाँ रह करके वो शक्ति भर रही है तो वहां जाकर के उस शक्ति का प्रयोग करेगी तो सफल होगी कि नहीं होगी, और यहाँ ही शक्ति नहीं भर रही है क्योंकि सोच रही है क्या होगा क्या होगा, तो उसको एकदम रियलाइज हुआ, यहाँ बैठकर मैं क्यों ये सोच रही हूँ। वो जैसे शेख चिल्ली की बातें सुनाते ना, शेख चिल्ली की बड़ी कहानियां आती है, क्या क्या सोचता रहता था सोचता रहता था, और जो उनका वर्तमान था वही नष्ट हो जाता था। एक बहुत प्रसिद्ध शेख चिल्ली की कहानी आती है कि उसको घी का घड़ा मिला है ना, मालूम है ना ये कहानी, घी का घड़ा मिला और वो घड़ा सिर पर रखा, उसको लगा अब ये तो बहुत महंगा होगा, अब मैं क्या करूंगा इससे, मैं इसको बेचूंगा और इससे बहुत पैसे मिलेंगे, फिर मैं धनवान बन जाऊंगा, फिर मैं एक बहुत खूबसूरत औरत से शादी करूंगा, हाँ फिर मुझे बच्चे होंगे। अब वो घी का घड़ा सिर पर उठाया, वो सोचता ही जा रहा कहाँ पहुंच गया, फिर वो मेरा बच्चा कहेगा, पप्पा मुझे एक आना दो, तो मैं नहीं दूंगा नहीं दूंगा। तो क्या किया, वो हाथ जो घड़े पर था वो तो भूल ही गया कि घड़ा सिर पर है, नहीं दूंगा तो क्या हुआ वो घी का घड़ा ही गिर गया। तो इसको कहते हैं शेख चिल्ली की कहानियां। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि जो बीत गया वो तो बीत गया, जो आना है वो तो आना है समय पर, इसलिए बाबा ने ड्रामा का ज्ञान भी हमें दिया है। पर अभी हमें अपने श्वास समय संकल्प शक्ति को बचाना है, ताकि ये बचत अगर इस समय है तो अगर कुछ होगा भी तो ये काम आएगा ना। ये बचत क्यों करते हैं, आई वेल के लिए, ऐसे आवश्यकता के समय पर वो काम आए, तो ये बचत हो गई ना। अगर हम व्यर्थ सोचते 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 और उसी में खो गए, तो अभी जो कुछ मुझे करना था वो तो भूल ही गया, अरे अरे इतनी देर हो गई, पता नहीं मैं किस ख्वाब में खोया हुआ था। तो इसीलिए बाबा कहते हैं समय की बचत करो, अर्थात वेस्ट मत करो। तो इसके लिए हर घड़ी हमें अपने आप को सावधान करना होगा, इसलिए बीच बीच में समय प्रति समय ये ट्रैफिक कंट्रोल बजाते हैं। क्यों ये ट्रैफिक कंट्रोल बजाते हैं, ताकि कहीं आप बहक गए अपने विचारों में तो ट्रैफिक कंट्रोल माना वापस सावधान हो जाओ। स्पीड ब्रेकर लगाते रोड पर कि कहीं फास्ट स्पीड हो गई और रोक न सके कोई आया तो बीच में स्पीड ब्रेकर चाहिए। ट्रैफिक लाइट्स लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं, ताकि व्यवस्थित रहे सारी ट्रैफिक, नहीं तो कोई कहाँ जाएगा कोई कहाँ जाएगा कोई कहाँ जाएगा, इसीलिए सब व्यवस्थित हो। तो ये ट्रैफिक कंट्रोल हमारे संकल्पों का क्या है, कि हम अपने विचारों को व्यवस्थित कर सके, अगर व्यर्थ जा रहा है उसको रोक सके। और बाबा ने उसके लिए दो युक्तियां बताई है। एक बाबा ने कहा है, अगर कहीं बह रहे हैं कहीं व्यर्थ विचारों में या अशुद्ध में या जो भी जो जरूरत नहीं है, तो फिर एकदम से अपने आप को कहो नॉट, नहीं। जैसे ब्रेक लगाना बहुत जरूरी है, ब्रेक नहीं लगाएंगे तो एक्सीडेंट हो सकते हैं, इसीलिए ब्रेक बहुत पावरफुल चाहिए गाड़ी में। अगर पावरफुल ब्रेक नहीं है और हम ब्रेक लगा रहे हैं और यहाँ ही जहाँ ब्रेक लगती वहीं रुकनी चाहिए गाड़ी, अगर वहाँ की बजाय आगे थोड़ी गई और फिर जाके रुकी तो भी एक्सीडेंट हो सकता है। इसीलिए पावर ब्रेक, आजकल पावर ब्रेक हर एक गाड़ी में होती है और उस जो जिस गाड़ी में पावर ब्रेक है वहाँ पीछे लिखा रहता है प्लीज कीप डिस्टेंस, पावर ब्रेक, आप अपनी माना पीछे रहो, एकदम नजदीक मत आओ, क्योंकि अगर मान लो एकदम नजदीक नजदीक चल रही है उस आगे वाली गाड़ी के और उसने ब्रेक लगाई, वो तो तुरंत रुक जाएगा और हमारी गाड़ी में वो नहीं है मान लो, तो क्या होगा, टक्कर लग सकती है। इसीलिए फासला रखो, क्योंकि ये इसमें पावर ब्रेक है। तो बाबा कहते हैं पावर ब्रेक अर्थात उसी घड़ी वो संकल्प बंद हो जाना चाहिए। ये नहीं कि हमने सोचा हाँ बंद करना है ये संकल्प और बंद ही नहीं हो रहा है, बंद ही नहीं हो रहा है, तो कैसे हम बंद करें, जबरदस्ती भी करना पड़ेगा, नहीं नहीं सोचना, क्योंकि ध्यान तो जाएगा कि मैं तो ये व्यर्थ सोच रहा हूं। और दूसरा बाबा कहते डॉट, पास्ट की बातों को डॉट लगाओ, बिंदु। बाबा ने ड्रामा का कितना सुंदर ज्ञान हमें दिया है, नथिंग न्यू का पाठ पढ़ाया है, हर चीज कल्याणकारी है, जो जो गया, जो हो गया हाँ वो भी अच्छा, जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। तो समय की बचत बहुत जरूरी है, नॉट और डॉट लगा करके आप समय को बचा सकते हो, व्यर्थ संकल्पों से बचा सकते हो। फिर दूसरा बाबा कहते हैं हमारा श्वास, श्वास भी तब तेज चलता है जब अंदर में कोई चिंता है, कोई भय है, हाँ? जब कोई भय के वश है या चिंता के वश है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, या तो कोई डर या चिंता, तो ये दो कारण होते हैं जो थोड़ा सांस जल्दी चलने लगता है। अब बाबा कहते डरने की तो कोई बात ही नहीं है, किस बात का डर, क्यों हम डर रखे, डर डर क्यों लगता है जब कोई व्यक्ति अकेला होता है, अकेले लोग जो होते हैं ना लोग बहुत डरते हैं, पता नहीं अकेले अकेले रास्ते पर कहीं जा रहा हो और अंधेरा है, कितना डर लगता है उसको, पर उसके अगर कोई साथ है तो डर तो कम हो जाता है, और वो साथी जो है वो बहुत ही पावरफुल है, तो डर एकदम खत्म हो जाएगा कि मेरे साथ जो है वो पावरफुल है, वो तो कहता रहेगा डरो मत, बच्चा डरता है पापा साथ में है तो पापा कहेगा बेटा डरो नहीं मैं हूं ना, डरो नहीं, तो कौन है हमारे साथ। अगर अंदर में कोई भी कारण से डर लगता है इसका मतलब बाबा को हमने अपने साथ नहीं रखा है, तो साथी को साथ रखो, और हर स्थिति हर घटना जो बाबा कहते हैं साक्षी होके देखो, तो न चिंता होगी न डर होगा, दोनों ही बातें नहीं होगी। परंतु ये कब होगा, ये कब होगा, न डर रहे न चिंता रहे, जब हमको ड्रामा का पार्ट एकदम पक्का होगा कि ड्रामा में जो कुछ होता है वो कल्याणकारी है, अकल्याण जैसी कोई चीज है ही नहीं, कोई अकल्याण है ही नहीं, आप सोचो कुछ भी अकल्याण नहीं है, चाहे इतना बड़ा युद्ध हुआ, इतना बड़ा जो कुछ हुआ, इतने मारे गए, ये सब हुआ, ये सब हुआ, अकल्याण है ही नहीं, आप कहेंगे अकल्याण नहीं है, इतने बड़े एक्सीडेंट्स होते हैं, कितना दुख है, कितना कष्ट है, कितना ये सब, अकल्याण है ही नहीं, पर इसके पीछे क्या कल्याण समाया हुआ है। बाबा कहते हैं इसे संसार में वैराग्य की वृत्ति आएगी, नहीं तो वैराग्य कैसे आएगा। वैराग्य आने के लिए ये सब चाहिए ना, दुख अति में जाएगा तभी तो वैराग्य आएगा। बाबा कई बार मुरली में कहते हैं कि दुखों के तो पहाड़ गिरने हैं, तो कई सोचते होंगे भगवान ऐसे कह रहा है अपने बच्चों के लिए कि दुखों के तो पहाड़ गिरने। कोई बाप अपने बच्चों के लिए ऐसे कहेगा क्या कि तुम्हारे ऊपर दुखों के पहाड़ गिरेंगे? ये तो जैसे किसी को श्राप देना हो गया। या बाबा कभी कभी सावधान करते हैं कि बच्चे अगर आपने पापों को भस्म नहीं किया तो धर्मराज की सजाएं मिलेगी। अब ये कोई बाबा श्राप देते हैं क्या? ये बाबा सावधान करते हैं, श्राप नहीं देते हैं। कई लोग समझते हैं कोई ऐसे कहे तो कहेंगे ये श्राप दे रहा है मुझे, लेकिन ये सावधानी तो बहुत ही जरूरी है। दुखों के पहाड़ अगर न गिरे तो दुनिया में वैराग्य आएगा ही नहीं। विकारों में ऐसे फंसे हुए हैं, समझते हैं यही माई बाप है, यही माई बाप है, यही हमारे लिए स्वर्ग है, यही हमारे लिए जो कुछ है ना, यही अमृत है। लेकिन जब वो चीज जाती है तब आंखें खुलती है। तो इसलिए दुखों के पहाड़ आना भी एक वरदान है, इतना विनाश होना भी एक वरदान है। अंत में जो विनाश होगा, इतनी खून की नदियां बहेगी, बाबा कहते हैं ये वरदान कैसे होगा, धरती को ताकत मिलेगी। आप सोचो, उस रूप में कभी सोचा कि सबकी जो शरीरों की बलि मिलेगी धरती को, खून मिलेगा धरती को, उससे सतयुग की धरती उपजाऊ बन जाएगी। कई लोग ना खास उसमें खून डालते हैं, ये खाद के रूप में मदद करता है। तो इतने सबका जो शरीर सब होम होंगे, स्वाहा होंगे अंत के समय, क्योंकि आत्माएं तोड़ेगी तो धरती तो उपजाऊ बन जाएगी। अभी फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, कितने कीटनाशक दवाइयां डाल रहे हैं, पता नहीं क्या भोजन हो गया है, तो वो फिर से उपजाऊ कैसे बनेगी धरती? इतने सब की का खाद, इनकी खाद मिलेगी धरती को। और बाबा कहते हैं अभी इतने 700 करोड़ जनसंख्या, और मुझे तो इसको घटा के 9 लाख करनी है, तो 9 लाख कैसे होगी, कैसे होगी? जब इतना कुछ भयंकर रूप हो तभी तो होगी ना। लेकिन फिर कई कहते हैं कि भाई शंकर निमित्त बनता है, तो वास्तव में कोई निमित्त नहीं बनता। अगर शंकर को दोष दें कि भाई वो विनाश करता है, तो सारा पाप शंकर पर आ जाएगा। इतने लोगों की मौत का पाप किस पर चढ़ेगा? शंकर पर। लेकिन नहीं, शंकर तो कुछ है ही नहीं, बाबा कहते ना, इसलिए शिव शंकर को एक कर दिया है। तो विनाश जो होगा तो कौन निमित्त होगा? कोई भी निमित्त नहीं होगा, किसी एक का दोष होगा ही नहीं। ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी जो कोई समझ ही नहीं सकेगा, क्योंकि समय आ गया है, बुद्धि सबकी भ्रष्ट हो जाएगी। किसको दोष दे? एक को तो दोष दे ही नहीं सकेंगे। और ये सब ड्रामा निश्चित हुए। तो जो निश्चित ड्रामा है, भावी ताली नाही तले, बनी बनाई बन रही अब कुछ बननी नाही, चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए। ये इतना आत्मा को पक्का हो तब हम अपना श्वास, समय, संकल्प और शक्ति, ये जो चार मूल बातें हैं, इनकी हम बचत कर सकेंगे। और ये जैसे ही बचत हुई तो हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति, हमारी स्मृति, हमारी कृति, ये सब श्रेष्ठ बन जाएगी। अभी क्योंकि समय, श्वास, संकल्प, शक्ति व्यर्थ जाता है, तो दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, कृति, वाणी, ये जो और पांच चीजें हैं, ये शक्तिशाली नहीं बनते हैं। इनको शक्तिशाली बनाने के लिए ये चार चीजों की बचत चाहिए, इनको इनको संभालना है, समय, श्वास, संकल्प और शक्ति, चाहे वो शारीरिक शक्ति हो चाहे मानसिक शक्ति हो, क्योंकि ज्यादा सोचने में भी मानसिक शक्ति बहुत यूज होती है, बहुत ज्यादा थक जाता है, ब्रेन ही थक जाता है, बहुत बहुत सोचा बहुत सोचा बहुत सोचा, सिर में दर्द होने लगता है, अरे भाई सिर में क्यों दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है, क्योंकि सोचा बहुत, और इसलिए नॉट और डॉट लगाया, ड्रामा का ज्ञान मिला, ये चारों को फुल स्टॉप लग गया, बचत हो गई। तो इससे क्या होगा, जो अन्य पांच चीजें हैं, दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, कृति और वाणी, ये पांचों ही हमारे शक्तिशाली बनेंगे। तो बाबा कहते हैं दृष्टि को भी कैसे हम शक्तिशाली बनाएंगे, क्योंकि नेचुरली जब समय, श्वास, संकल्प शक्ति की बचत हुई तो संकल्प हमारे श्रेष्ठ होंगे, और जो श्रेष्ठ संकल्प होंगे तो ऑटोमेटिकली दृष्टि वृत्ति तो श्रेष्ठ होगी, स्मृति भी श्रेष्ठ होगी, कृति भी श्रेष्ठ होगी, वाणी भी श्रेष्ठ होगी, क्योंकि हर चीज हमारे संकल्प पर आधारित है। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को कहा ये अभी इनकी बचत करो और ये श्रेष्ठ करो, तो क्या होगा, आने वाले समय में आपके लिए समय नहीं होगा, अपने लिए उस समय आपको देना होगा, पर ये देंगे तब जब आपका इतना इतनी शक्तिशाली होगी, आपकी दृष्टि इतनी शक्तिशाली होगी तब दे सकेंगे। इसीलिए हमारा ही यादगार बाबा कहते ये देवियां हैं, कि एक ही दृष्टि, पावरफुल दृष्टि से कैसे असुरों का नाश कर रही है, एकदम आंखें लेजर आईज एकदम नाश कर रही है, या जो कुछ रूप उनका दिखाया है वो शक्तिशाली रूप दिखाया है, ये उनकी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, कृति और वाणी की शक्ति का प्रभाव है, पर उसके लिए ये चार चीजों की बचत जरूर चाहिए। तो जैसे अंदर में शक्ति जमा होगी तो हमारी दृष्टि भी पावरफुल बन सकेगी। देखिए दृष्टि के लिए क्या कहा जाता है, किसी गुरु के पास गए और गुरु की दृष्टि पड़ी तो क्या कहेंगे, गुरु की दृष्टि पड़ी मैं नजर से निहाल हो गया, है ना, नजर से निहाल खींदा स्वामी सतगुरु बाबा कहते हैं मुरली में, तो गुरु की नजर पड़ी और मैं निहाल हो गया। और दूसरी बात, ऑपोजिट अगर किसी की गंदी दृष्टि है, किसी की विकारी दृष्टि है, तो उसके लिए क्या कहते हैं, उसको श्राप दे देते हैं, वो ट्रकों के पीछे लिखा रहता है ना, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। मैं एक जगह मैं जा रही थी गाड़ी में, तो ट्रक के पीछे इसमें कुछ परिवर्तन था लिखत में, तो बुरी नजर वाले तेरा भी हो भला वो ऐसे लिखा था, मैंने कहा अच्छी बात है, ये भी पॉजिटिव सोच लिया, भले तुम बुरी नजर रखो लेकिन हम आपको क्षमा कर देते हैं, तुम्हारा भी भला हो, लेकिन बुरी नजर वाले को श्राप तो मिल ही जाता है ना, तेरा मुंह काला है। तो इसीलिए हमारी दृष्टि कैसी हो, जो जो भी उस दृष्टि से अनुभव करे अनिहाल हो जाए, तो बाबा कहते अंत में वाणी के द्वारा ज्ञान देने का भी समय नहीं मिलेगा, आपके पास बहुत लंबी लाइन आएगी, अंजलि देनी होगी, बस एक जैसे हाथ में उसे उठाया दिया, तो हाथ से उठाना देना माना बस दृष्टि देना, शांति की भिखारी आत्माएं आएंगी, प्रेम की भिखारी आत्माएं आएंगी, सुख की खुशी की भिखारी आत्माएं होंगे, शक्ति की भिखारी होंगे, बस आपकी एक दृष्टि पड़ी और उसको साक्षात्कार भी हो सकता है, बस वो साक्षात्कार हो जाए और वो अनुभव कुछ कर ले तो आपकी दृष्टि की कमाल होगी, लेकिन उसके लिए इतनी अंतर में शक्ति हो, इतनी आपके अंदर पवित्रता हो इतनी आपके संकल्प श्रेष्ठ हो जो आपने दृष्टि दी और उनको साक्षात्कार हुआ। शुरू में तो बाबा से बहुत साक्षात्कार ऐसे ही होते थे, वो ब्रह्मा बाबा तो कहते थे ये मेरी शक्ति तो है ही नहीं, क्योंकि बाबा किसको देखे और वो ध्यान में चला जाए। तो बाबा तो साधारण ही थे ना, पर वो शक्ति किसकी काम कर रही थी? हाँ थी तो शिव बाबा की, लेकिन आंखें तो ब्रह्मा बाबा की ली ना। तो जो जिसको बाबा देखता वो ध्यान में चला जाता था। तो ये शिव बाबा की शक्ति का जादू था शुरू में। तो बाबा कहते हैं इसलिए तुम बच्चों को बाप समान बनना है, जो अंत के समय एक एक बाप समान बने और जिसको दृष्टि दे रोता रोता आए, दुखी आए और एकदम उसको शांति की अनुभूति हो, वो थोड़ी सी शांति ही उसको मुक्ति दिला देगी, क्योंकि अंतिम घड़ी होगी उसकी। हम तो दादी जानकी का चमत्कार देखते हैं, सच्ची कई ऐसी आत्माएं बिल्कुल जैसे डेड बेड रिडन एकदम, बस अभी गई की गई, लेकिन दादी का इंतजार करते कईयों का अनुभव। दादी जानकी हमारे पास आए और वो हमको दृष्टि दे तब शरीर छोड़े। और सचमुच दादी वहां लंदन में तो बहुत ऐसे किस्से, बहुत ऐसे अनुभव। दादी गई और दादी ने उसको दृष्टि दी और उसके पास जो कुछ थोड़ा जेब में अमानत कुछ होगी, भाई मुझे ये दादी को देना, अपने हाथ से देना है, तो बस दादी गई, दादी को हाथ से दिया, गई और आत्मा उड़ी। मानो इतनी निरसंकल्प होकर के गई, क्योंकि अंत में उसको दादी की दृष्टि मिली। दादी जहां भी जाते ना, हॉस्पिटल्स में जाती है, सब बहुत हमेशा दादी का ये है कि जहां जहां बाबा के बच्चे हैं ना, हॉस्पिटल में जरूर जाएगी, मिलने के लिए जरूर जाएगी। तो या तो वो जाएंगे बाबा के पास या तो अच्छे हो जाएंगे, दोनों ही होता है। यानी एकदम होपलेस है तो वो तो जाएंगे तो इंतजार ही करे, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, सब दे दिया। लेकिन कोई फिर एकदम अच्छे हो जाते, दादी आई, दादी की दृष्टि मिली और एकदम अच्छा हो गया, जैसे कि सारी बीमारी खत्म हो गई। तो ये शक्ति कहाँ से आई दादी को? क्योंकि उसने शक्ति अपने अंदर जमा की। अभी भी दादी का हिसाब किताब तो कहेंगे, लेकिन कई कहते कि इतनी बड़ी दादी, इतनी इनकी तपस्या, इतना उनका सब कुछ और इतना दादी को ये पेन। लेकिन इसके दो पहलू हैं। एक पहलू है कि ये सब जो हिसाब किताब यहीं चुकतु करने हैं, धर्मराजपुरी में नहीं जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा। कल भी बाबा ने कहा ना, ये धर्मराजपुरी में तो धर्मराज ही इनको सलूट दे मारेगा, इनको धर्मराज ही सलाम करेगा। धर्मराज के साथ साथ ये जूरी बनेगी, जूरी होती है ना, माना जजों की बेंच होती है, वो सब मिलके डिसाइड करते हैं, तो धर्मराज के साथ ये होंगे। तो इसीलिए यहाँ सब कुछ खत्म करके जाना है। और दूसरा कि जैसे ये कुछ आता है तो अंतर की शक्ति बढ़ जाती है, अंतर की शक्ति इतनी बढ़ जाती, क्योंकि अशरीरी अवस्था बहुत बना सकते हैं, अभ्यास है। तो चाहे कितना भी पेन हो, परंतु अशरीरी बन गए तो वो पेन तो पता ही नहीं चलेगा, दर्द का पता ही नहीं चलेगा। तो ये अभ्यास और बढ़ा रहे हैं और अशरीरी बन रहे हैं, तो ताकि और अंतर की शक्ति बढ़ती है। कईयों का उल्टा होता है, थोड़ा सा पेन हुआ, दर्द हाय हाय हाय, रोते ही रहेंगे, चिल्लाते ही रहेंगे। हॉस्पिटल में आप जाएंगे ना, थोड़ा सा दर्द होगा, चिल्ला रहे, और कोई देखो कितना भी दर्द है तो भी मुस्कुरा रहे हैं। अंतर की सहन शक्ति का पता चलता है। तो इससे जैसे अंतर की शक्ति इतनी बढ़ रही है क्योंकि अशरीरी बन रही है, और उससे जो शक्ति बढ़ती है वो शक्ति का संचय होता है। और दूसरी ओर हिसाब किताब सूली से कांटा हो रही है, नहीं तो धर्मराजपुरी में तो सजा तो खानी होगी, नहीं तो। तो इसीलिए ये कोई न सोचे इतना इतनी तपस्या इनकी, फिर भी ये एक जन्म का थोड़ी कोई हिसाब किताब है, कितने जन्मों का हिसाब किताब है, 63 जन्मों का। और अभी हमको जो जमा करना है उसमें 63 जन्मों का जो कर्जा है वो पूरा करना है, इतना इतनी कमाई करनी है। 63 जन्मों का जो कर्जा हमारे सिर पर है, पापों की गठरी है, वो उतारनी है। इतना बोझ है सिर पर, एक जन्म का बोझ थोड़ी है। और फिर 21 जन्मों का जमा करना है, तो टोटल 84 जन्मों का हिसाब है ना, तो 63 जन्मों का खत्म करना है और 21 जन्मों का जमा करना है। तो कितनी कमाई करनी पड़ेगी, कितनी बचत करनी पड़ेगी, सोचो। कमाई भी करनी पड़ेगी और उस कमाई से बचत करनी पड़ेगी। किसके सिर पर बहुत ऋण हो, बहुत ऋण हो, तो कितनी कमाई करनी पड़ेगी जो ऋण भी चुकता करे और आगे के लिए बचत भी करे। पहले तो ऋण को खत्म करना है और आगे की फिर बचत होगी नहीं जब तक ऋण पूरा नहीं हुआ है, बचत होगी क्योंकि ऋण ही चुकता कर रहा है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बचत करो। फिर जब बाबा कहते हैं वेस्ट, ये वेट कम करो, हल्के बनो, क्योंकि हल्का अगर नहीं बनेंगे अंतर से हल्का, तो बाबा कहते उड़ नहीं सकेंगे, उड़ नहीं सकेंगे। देखिए आप देखेंगे हवाई जहाज होते हैं ना, उनका जो पेट्रोल होता है वो इतना हल्का होता है, बात मत पूछो, बिल्कुल जैसे हल्का, पानी से भी हल्का मैंने देखा है। क्योंकि हवाई जहाज में तो कितने गैलन भरना पड़ता है ना, कितना दूर जाना है तो कितना पेट्रोल भरना पड़ता होगा, और अगर हवाई जहाज का पेट्रोल भारी हो तो क्या होगा, कैसे उड़ेगा। तो एविएशन फ्यूल कहते हैं, बहुत हल्का होता है, डबल रिफाइंड, ट्रिपल रिफाइंड, इतना रिफाइन करते करते जो आखिरी है ना वो होता है हवाई जहाज का पेट्रोल। हम आसाम गए थे, आसाम में हमने देखा, तो फिर तो क्रूड ऑयल होता है जो धरती से निकलता है ना तेल, वो उनके बड़े बड़े कुएं हैं, तो वहाँ वो कुएं देखे हमने, देखे किसने गए कोई आसाम में जहाँ पेट्रोल के कुएं होते हैं, तेल के कुएं, किसने देखे, देखे एक दो ने, तो हम वहाँ गए थे देखने के लिए। तो उनकी रिफाइनरी में गए थे कि ये जो तेल जो जब वो निकलता है इतना काला काला होता है, जो बात मत पूछो, इतना भारी होता है, बात मत पूछो, अगर उसको देखते भी तो लगता है चिकना, इतना काला, इतना भारी, इतना जो धरती से निकलता है। फिर उसको रिफाइन करने के लिए कितने कितने उनके साधन है, अलग 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 मशीनें हैं। तो पहले क्रूड ऑयल जैसे उसमें डाला, इतना भारी, मोटा, काला, तो क्या होता है, तो पहला जो बाय प्रोडक्ट उनके निकलते रहते हैं, तो पहला बाय प्रोडक्ट क्या निकलता है उसमें से, ये जो ना डामर, डामर होता है ना, ये डामर निकलता है। डामर कितना भारी होता है, तो काला 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 पहले पहले निकला, हमने कहा ये क्या है, बोला ये डामर है। अच्छा, वो एक जगह अलग करते जाते, फिर थोड़ा और आगे बढ़ता है, वो थोड़ा हल्का हुआ क्योंकि डामर निकला तो कितना, फिर थोड़ा फिर आगे गए तो वैक्स निकलता है, वैक्स जिससे मोमबत्तियां बनती है ना, मोमबत्ती सब चिकनी चीजें, सब चिकनी चीजें, तो वो चिकनी चीजें वो सब एक एक करके निकलती जाती है। लेकिन हर चीज का उपयोग है, डामर का भी उपयोग करते हैं, फिर जो वैक्स निकलता है वो वैक्स में से बहुत सुंदर सुंदर मोमबत्तियां बनाते हैं, तो वो भी दिखाया। वो मोमबत्ती में के कारखाने में भी ले गए, देखो ये वहां से ये आया है और इतनी सुंदर सुंदर मोमबत्तियां बना, कुछ भी वेस्ट नहीं करते हैं, हर चीज को सफल करते जाते, भले कितना भी वो काला आया। और तो 15 प्रोडक्ट्स निकले, 15 चीजें वो उस तेल में से जो धरती से निकला, और लास्ट में जाकर के कहा कि ये हवाई जहाज का पेट्रोल है, क्योंकि सब जो किचरा था वो निकलता गया, और उसको सफल करते गए, फेंकते नहीं है, सब सफल करते हैं। और लास्ट में वो हवाई जहाज का पेट्रोल निकला, सब दिखाया। हमको बड़ा इंटरेस्ट हुआ कि देखिए तो सही क्या क्या निकलता है, क्या चीजें। तो कई ऐसे तेल वो साबुन में यूज होता है, कई और कई वो फिनाइल बनती है, ये सब बनते हैं। हमारे यहाँ भी है नीचे शांतिवन में, आप लोगों ने देखा है शांतिवन में हमारा साबुन की फैक्ट्री, देखिए नहीं देखिए कितनी चीजें बनाते। तो उस मैंने उनसे पूछा आप कितनी चीजें यहाँ बनाते हो, बोला हम 16 चीजें बनाते हैं, फिनाइल भी बनाते हैं, साबुन भी बनाते हैं और पता नहीं क्या क्या बनाते वो चीजें। तो वहां तो कितना बड़े रूप में था वो, जहाँ आसाम में रिफाइनरी में हमारा भाषण था, तो वहां पर तो बाबा कहते हैं कि उड़ने के लिए क्या करना होगा, हल्का बनना होगा। अगर हल्के नहीं होंगे तो उड़ नहीं सकेंगे। तो क्या क्या बोझ है हमारे ऊपर, ये सब खत्म करना पड़ेगा, सब निकालना पड़ेगा, तब हल्के होंगे। तो वजन कम करो, माना सबसे ज्यादा वजन है नेगेटिव विचारों का। इसीलिए जब बाबा कहते हैं कि विकारों को जीतो, वो मोटा मोटा रूप तो बहुत ही भारी है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये तो भारी भारी है, बहुत भारी है। लेकिन फिर उसके बाल बच्चे हैं, वो भी कोई कम नहीं है, ईर्ष्या द्वेष नफरत, भले ये क्रोध के ही भिन्न 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 रूप हैं, तो उनको भी जीतो। फिर पहले तो बाबा कहते थे कि बच्चे अगर संकल्प में आए तो कोई बात नहीं, कर्म में मत लाओ, क्योंकि कर्म में लाएंगे तो उसके उसका वो बोझ चढ़ेगा। संकल्प में आए तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी जबकि बाबा हमें इतना ऊंचा ले जा रहे हैं तो बाबा कहते संकल्प में भी नहीं आना चाहिए। संकल्प तो क्या स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए। क्यों बाबा कहते संकल्प तो क्या स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि स्वप्न हमारे वश में नहीं होता है, संकल्प तो फिर भी हमारे वश में है, हम क्या सोच रहे हैं पता तो चलता है ना। और स्वप्न में क्या देख रहे कि वो हम उसको रोक तो नहीं सकते ना, वो स्वप्न आता ही रहता है, आता ही रहता है। लेकिन स्वप्न में भी नहीं आए, क्योंकि हमारे अंदर जो स्वप्न हमको आते हैं वो भी हमारे संकल्प और संस्कारों के आधार पर ही होते हैं, ऐसे ही नहीं स्वप्न आते। हमारे से पूछा कि बहन जी आपको स्वप्न आते, तो हमको तो यही स्वप्न आते, मैं भाषण कर रही हूँ ये कर रही हूँ, बस यही स्वप्न आते हैं बस, और तो कोई स्वप्न ही नहीं आते। कभी कभी सतयुग का स्वप्न आता है, पर बाकी तो कभी कोई स्वप्न नहीं आता है, क्योंकि रात को बाबा की याद में सो जाओ, बाबा की गोद में सो जाओ तो स्वप्न भी नहीं आएंगे। स्वप्न भी तब आते हैं जब रात को कुछ ऐसे विचार करके सोते, कोई टीवी देख के सोते हैं, टेरर फिल्में, आजकल तो पता नहीं क्या लोगों को क्या मजा आता है, टेरर वो फिल्में, डरावनी फिल्में, सस्पेंस फिल्में रात को देख करके सोते हैं, फिर क्या होता है तो नींद में क्या आएगा, स्वप्न भी वैसे ही तो आएंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं जैसे रात का समय आते जाए सब संकल्पों से फारिग होते जाओ, बाबा से बातें करो, भले अपना चार्ट लिखो, बाबा कहते हैं चार्ट लिखो और बाबा की याद में रहो, मुरली पढ़ के सो जाओ। मुरली पढ़ के सोना भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वही बुद्धि में रहेगा। बाबा से बातें करो और बाबा को कहो बाबा मुझे सुबह 3:30 बजे उठाना। यहाँ तो सहज उठ जाते हो ना सभी, घर में भी सहज उठते हो या यहाँ ही सहज उठते हो? घर में क्या होता है, वहाँ घर में थोड़े दूसरे सोए होते हैं तो सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं है थोड़ा और सो जाओ, यहाँ तो सब उठते हैं तो इसीलिए उठना ही पड़ता है, लेकिन अपने आप उठ जाए। पर उसके लिए रात अंत मते सो गते, अंत की जो स्थिति होगी वो उसके आधार पर सवेरा होगा। और बाबा की याद में लेटे सोए और बाबा की गोद में विश्राम किया और सवेरे उठे, कोई स्वप्न नहीं कुछ नहीं, परंतु उसका आधार है हमारी सोच कैसी है सारे दिन में। तो सोच हमारी इतनी श्रेष्ठ हो तब हल्के बनेंगे। उसके लिए भी क्या करना होगा, उसके लिए क्या करना होगा, अब नेगेटिव को या अशुद्ध व्यर्थ को खत्म ऐसे भले नॉट और डॉट करेंगे तो नहीं होगा, इतना सहज नहीं भी होगा। उसकी जगह कई बार बाबा कहते पॉजिटिव जोड़ो, पॉजिटिव। अभी आप योग में बैठे हो और योग नहीं लग रहा है तो फोर्सिबली मत बैठो, जबरदस्ती भी योग नहीं लग रहा है तो भाई उठो, चलो, फिरो, मुरली पढ़ो। तो मुरली पढ़ो तो वो उसको फीडिंग मिलेगी बुद्धि को, तो वो फिर विचार चलेंगे। जैसे कोई भी पानी है आपके पास, किचरे वाला पानी है, उसको साफ करना है तो कैसे साफ करेंगे? इसके कई तरीके हैं साफ करने के। एक तरीका है कि इसको छोड़ दो तो जो किचरा है वो धीरे धीरे नीचे बैठ जाएगा और ऊपर साफ पानी आएगा, ये एक तरीका है। तो कई बार जो बहुत ज्यादा चिंता होती है, बहुत ज्यादा होता है, तो थोड़ा धीरज रखो, ठीक हो जाएगा, मन उसको छोड़ दो, उस समय के लिए छोड़ दो। इसीलिए कहते हैं ना, टाइम इज अ वेरी बिग हीलर, समय उपचार करता अपने आप ठीक हो जाएगा। इसीलिए समय पर हो जाएगा तो थोड़ा धीरज रखो, धीरज का फल मीठा है। तो ये जैसे वो किचरे वाले पानी को रख दिया तो किचरा नीचे जमा हो गया और ऊपर साफ पानी मिल जाएगा, वो बात चल जाएगी, टल जाएगी या पूरी हो जाएगी। उस समय अगर रिएक्ट किया तो इसका उल्टा ही डिसएडवांटेज होगा और ही बुरा इसका प्रभाव पड़ेगा। शांत हो जाओ, कुछ भी जवाब मत दो, किसने कुछ कहा, कुछ हुआ, शांत। तो ये जैसे पानी को रखना, अपने आप ठीक हो जाएगा समय पर। परंतु मान लीजिए नहीं होता है तो क्या करो फिर? तो दूसरा तरीका पानी को साफ करने का, फिल्टर करो। कपड़ा लेते हैं और कपड़ा लेकर के छानते हैं, तो छानने से क्या होगा, थोड़ा साफ पानी मिलेगा और ऊपर जो कचरा है वो कपड़े पर रह जाएगा। तो वो दूसरा तरीका है साफ करने का। तो इस तो ये कौन सा तरीका है, जैसा अंदर में निर्णय करो कि ये संकल्प करने से क्या फायदा होगा और ये संकल्प करने से क्या नुकसान होगा। ये अंदर ही अंदर बुद्धि द्वारा फिल्टर करो अपने विचारों को कि इतना सोचेंगे तो क्या इसकी रिजल्ट होगी, ये सोचेंगे तो क्या रिजल्ट होगी। तो जैसे बुद्धि रूपी फिल्टर ने आपने विचारों को फिल्टर कर दिया, और जो अच्छे विचार हैं वही मन में लाओ, और जो बेकार विचार हैं वो निकल जाएंगे क्योंकि बुद्धि हमारी फिल्टर बन जाती है। परंतु मान लीजिए उससे भी पूरा नहीं छनता है तो फिर तीसरा तरीका क्या है, उसको बॉइल करो, उसको उबालो, और उसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो उससे क्या करते हैं, डिस्टिलेशन प्रोसेस में उबालते हैं, तो उबालते उबालते उसी जो शुद्ध पानी है उसकी बाफ बनती है, वो बाफ बनती है, फिर वो बाफ को ठंडा पानी मिलता है तो वो बाफ फिर पानी बन जाती है, तो एकदम शुद्ध पानी बन गया और जो किचरा है वो सब नीचे रह गया। तो ये जो बाबा योग की शक्ति कहते हैं, भट्ठी कहते हैं, जिसमें सब बातों से न्यारे हैं, अपने आप को बिल्कुल फारिग कर दिया और एक बाबा दूसरा न कोई, एकांत, एक व्रता, एक एक जो बाबा कहते हैं ना, उस पर ही ध्यान देना और कुछ भी नहीं, तो वो जैसे डिस्टिलेशन प्रोसेस है, आत्मा को शक्तिशाली शुद्ध बनाने का एक सुंदर तरीका, जिसको बाबा भट्ठी कहते हैं। उस भट्ठी में और कुछ याद नहीं आए, बाबा जब मुरली में भी कहते हैं ना, 7 दिन की भट्ठी में रहो, तो ये शुरू में ऐसे भट्ठी करते थे, माना जैसे वो आए और उनको कहा कि बस मधुबन में आए हो और कुछ भी नहीं सोचना है, भट्ठी में बैठना है, अगर कोई याद आया तो 7 दिन फिर बैठो। तो उसको कई बार बाबा शब्द यूज करते क्वारंटाइन। क्वारंटाइन मालूम है क्या होता है, क्वारंटाइन क्या होता है? हाँ, तो क्या होता है, मैं आपको अपना अनुभव सुनाऊं क्वारंटाइन का। तो क्या है, हम क्योंकि जब जाते हैं ना कहीं भी दूसरे देश में जाते हैं तो कोई ऐसी चीज लेकर के आते हैं जो उस देश में अलाउड नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो चीज ले लेते हैं और क्वारंटाइन में रखते हैं। माना इलीगल चीज नहीं है, लेकिन अब जैसे मिसाल दूं, मैं ऑस्ट्रेलिया गई थी, तो ऑस्ट्रेलिया में उस समय मानो एक आवाज फैली थी कि भाई ये क्या है, पागल गाय का जो दूध है ना, अगर वो कोई पिएगा तो क्या होगा, वो पागल हो जाएगा। तो पागल गाय, मैड काउ डिजीज ऐसे कुछ हो गई थी। तो कहीं ना गाय को किसी ने मांस खिला दिया था, गाय तो मांस खाती नहीं है, तो पर विदेश में तो मांस ही खाते हैं, तो गाय को मांस खिला दिया। अब उसमें से जो दूध निकला वो किसी ने पिया, वो पागल हो गया। मतलब ये शुरुआत ऐसे है। तो मैड काउ डिजीज बहुत फैल गई थी यूरोप के अंदर, तो और जगह भी। तो क्या हुआ कि जहां भी जाते थे तो अगर कोई दूध की कोई चीज लाया तो वो अलाउ नहीं करते थे उस देश में। तो मैं क्या ऑस्ट्रेलिया गई, ऑस्ट्रेलिया में अभी जहां जाते टोली तो लेकर जाते हैं, तो वो बादाम पिस्ता के बड़े होते ना, वो हम लेके गए थे। तो जब हम सिडनी पहुंचे, ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, वहां एयरपोर्ट पर देखो इतने बड़े बड़े कुत्ते, बाप रे, इतने मोटे मोटे ऊंचे ऊंचे कुत्ते, वो हर एक का वो जो सूटकेस है ना सूंघ रहे थे, हर एक का सूटकेस सूंघ रहे थे। तो इसमें दो चैनल्स होते, रेड चैनल ग्रीन चैनल, भाई कोई डिक्लेयर करना है, तो हमने कहा नहीं। तो अब क्या हुआ, तो हम तो गए, तो वो हमारा भी सूटकेस सूंघने लगा। हमने कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, क्या सूंघ रहा होगा, लेकिन कहा खोलो। तो हमने खोला तो उसमें टोली थी, तो कहा ये क्या है। तो मैंने कहा ये तो प्रसाद है, और क्या है, किस चीज का बना हुआ है। तो हमने कहा ये तो उसमें दूध नहीं है, खाली बस शक्कर है और बादाम है, पिस्ता, दूध तो है नहीं, बड़े होते ना। तो कहा नहीं, ये कुत्ते ने सूंघा है, माना इसमें दूध होगा, लेने ही नहीं देवे। तो नहीं, अच्छा। तो हमने कहा नहीं, ये तो हम भारत से लाए हैं सबके लिए। तो हमने फोन किया सेंटर पर कि लेने नहीं दे रहे हैं, तो वो केस क्यों नहीं लेने देंगे, जरूर लेने देंगे, तो भी नहीं लेने दिया। एयरपोर्ट के अंदर तो जा ही नहीं सकते हम। खैर उन्होंने कहा ठीक है, आप अभी दे दो इनको, और फिर बाद में हम क्वारंटाइन ऑफिस में जाएंगे, क्योंकि वो सब चीजें क्वारंटाइन ऑफिस में ले जाते हैं, और तो अब हम वहां से ले लेंगे। कैसे नहीं, बाबा के घर की टोली हमको मिलेगी, ये क्या करेंगे। तो हमने कहा अच्छा ले लो। तो मैं कम से कम 5-7 किलो टोली लेके गई थी, क्योंकि बाकी तो खास नहीं, तो ले लिया सारा। तो मैंने कहा आप पहले देखो तो सही। नहीं, सब रख दो, तो इधर जितने भी डब्बे थे सब रखवा दिए, टोली के डब्बे। तो फिर उसके बाद उसको कहते वो क्वारंटाइन में जाते हैं। तो हमने कहा क्वारंटाइन कहाँ होता है, क्या होता है, तो सारा बताया। तो क्वारंटाइन में ना उसको अलग कर देते हैं, और बाद में उसका इन्वेस्टिगेशन होता है। समझो कोई व्यक्ति भी आता है और उसको कोई ऐसी बीमारी हो सकती है, कहाँ से आया, जहाँ वो बीमारी है, तो क्वारंटाइन में ले जाएंगे, उसकी सारी जांच होगी, उसको कोई ये बीमारी है तो नहीं, कुछ है तो नहीं, नहीं है तो फिर छोड़ देंगे, नहीं तो 7 दिन रखेंगे, उनको ठीक करेंगे, ताकि वो कीटाणु, वो जीव, वो बैक्टीरिया या वायरस उस देश में न जाए। तो हम गए टोली वो क्वारंटाइन ऑफिस में गए। तो हमने कहा, तो अब वो जो बहन थी, ऑस्ट्रेलिया की बहन थी, वो हमारे साथ चली, तो उसने कहा कि आप पहले खोल के तो देखो, आप ऐसे कैसे सीधा कह रहे हैं, ये दूध का खा के आप खोल के देखो। तो कहा अच्छा आप ही खोलो। तो खोला, तो हमने कहा ये देखो आप खाओ। खाए नहीं, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं है जैसे अंदर में डर। तो हमने खाया, उनको दिखाया, हमने कहा इसमें दूध है ही नहीं, यानी दूध की ये चीज ही नहीं है, ये तो केवल बादाम पिस्ता और शक्कर है, बस और कुछ नहीं है। तो खाया, तो उसको बहुत समझाया, फिर आखिर कहा चलो ले जाओ। आखिर दिया, पर इतना एक घंटा माथा मारने के बाद, क्योंकि एक से पूछे, फिर दूसरे से पूछे, तीसरे से पूछे, वो 10 लोगों से वो पूछा, हमारा एक घंटा चला गया। और हम लोगों ने कहा हम जाएंगे नहीं जब तक हमको वापस नहीं मिलेगा, ये तो भगवान का प्रसाद है, ये तो भगवान को भोग लगाया हुआ है, वो हम सबके लिए है, ये शुद्ध हमारे मन करेगा, बहुत कुछ उनको समझाया। और उनको फिर कहा आप लोग आना सेंटर पर आना। अब वो क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में, तो वो क्या जाने ये सब बातों से, लेकिन फिर आई थी वो माता जो थी ना, वो थोड़ा हम लोगों के प्रति थोड़ी भावना बैठ गई और बहुत अच्छा उनको ज्ञान दिया, प्यार से समझाया, तो आखिर मान गए, तो आई भी थी सेंटर पर और वहां बैठ, वहां टोली खाली पर वो क्वारंटाइन ऑफिस में टोली नहीं खाई, बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, भारत की तरह नहीं चलाओ चलाओ ऐसे नहीं चलता है, नहीं कुछ कुछ पैसा दे दिया सब हो गया, वहां तो बिल्कुल नहीं ऐसे, बहुत स्ट्रिक्ट है। तो सचमुच हमने देखा कि इसलिए बाबा कई बार विदेशों की महिमा करते हैं, क्योंकि वो रजोगुणी है ना, भारत तो क्या सतोगुणी था, एकदम तमोगुणी बना है, वो न सतो बनते न एकदम तमो बनते हैं, वो उस रजो स्थिति में है। यानी कहने का भाव है कि वेस्ट को कम करना माना, वेस्ट खत्म करना माना, या वेट कम करना माना, इतने हल्के बन जाओ जो आपका आपकी इतनी अंदर में शक्ति भरे, जो आपकी दृष्टि, आपकी वृत्ति, आपकी वाणी यही अंत में सेवा करे। वो दिखाते हैं ना कि ये महाभारत में जो आता है, महाभारत में कुंती का मिसाल आता है, कुंती के आंख पर पट्टी थी, वो दिखाते हैं, सारी कहानी आती है, हा? क्या बोलते हैं? सारे बोल रहे हैं गांधारी, सॉरी गांधारी, हाँ कुंती नहीं गांधारी, तो गांधारी, तो फिर कैसे, अब जब उसने दृष्टि खोली, जिस चीज पर पट्टी लगी हुई थी वो कमजोर रह गई, और जहां उनकी दृष्टि पड़ी वो लोहे का हो गया, माना वज्र हो गया। तो ये इसका आधार क्या है, क्योंकि इतना समय जो आंखों पर पट्टी बांधी थी, तो अंदर में माना भाव ये क्या था कि वो शक्ति अंदर में भरी, इतनी शक्ति अंदर में भरी जो उसके बाद जब आंखें खोलेगी तो वो जहां चीज, वो जहां आंखों आंखें पड़ी वो चीज में शक्ति आ जाएगी। माना भाव तो यही होगा ना, ये थोड़ी कि आंखों पर पट्टी बांध दी और ऐसे ये तो कहानियां बना दी है, पर भाव ये है। तो बाबा भी कहते हैं इन आंखों को सिविल बनाओ। तो कैसे ये आंखें सिविल होगी, ये सिविल कैसे बनेगी, ये आंखें कोई सिविल की बात नहीं है, लेकिन ये तीसरी आंख, बाबा कहते वो तीसरी आंख देखे, ये आंखें भी, ये आंखें तो देखते हुए नहीं देखे तब शक्ति आएगी, क्योंकि हर चीज देखेंगे तो शक्ति नहीं आएगी, पर तीसरी आंख से देखने, और ये आंखें इस संसार को देखते हुए भी नहीं देखे तब ये आंखें भी शक्तिशाली होगी, तब थर्ड आई तीसरी आंख काम करेगी। वो तीसरी आंख काम तभी करेगी जब ये आंखें हमारी देखते हुए नहीं देखेगी, क्योंकि ये देखेगी तो वो आंख काम नहीं करेगी, वो आंख काम तब करेगी जब ये आंखें देखते हुए नहीं देखे। इसलिए बाबा ने कहा है, क्योंकि ये हमारे हाथ में, देखते हुए नहीं देखना, हम दुनिया को न देखिए उसकी आंखों पर पट्टी तो नहीं बांधेंगे, देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, बाबा जो कहते हैं इसका मतलब क्या है, क्योंकि न आंख को हम पट्टी बांध सकते, न कान को हम बंद कर सकते, वो तो खुला ही रहेगा, सूरदास की तरह तो नहीं हम आंखों को फोड़ेंगे कि ये आंखें ही धोखा देती है इसलिए आंखों को फोड़ दो, बाबा कहते नहीं, ये दृष्टि से ही तो सेवा करनी है, इन इंद्रियों को भी सिविल बनाना है, तभी तो भविष्य में सतयुग में एक एक अंग हमारा कमल से भेंट होता है, तो अभी की बात, कोई भविष्य की तो बात नहीं है कि नयन कमल, चरण कमल, हस्त कमल, हृदय कमल, कोई भविष्य की कमल की बात है, ये अभी है ना कमल, कमल से तो तब भेंट होती है जब कीचड़ हो, वहां तो कीचड़ ही नहीं है, तो देवताओं के अंग अंग को कमल से भेंट नहीं होती, नहीं करेंगे, यहाँ हम ब्राह्मणों के अंग अंग को कमल से भेंट करेंगे, क्योंकि कीचड़ है चारों तरफ, चारों तरफ विकारी दृष्टि है, विकारी वृत्ति है, विकारी आकर्षण है, और बाबा हम बच्चों को इनसे न्यारा कर रहा है। तो इसीलिए बचत भी करो और हल्के भी बनो, तब ये आपकी दृष्टि वृत्ति वाणी कृति थोड़ा बोलेंगे लेकिन वो शक्तिशाली बोल होंगे। इसलिए बाबा ने दादियों को तो ये कह दिया, अभी आप लोग भाषण नहीं करो, आप लोग केवल भाषणा दो, भाषण करने वाले दूसरे हैं। फिर भाषण करने वालों को जो टीचर्स थी बाबा ने उनको कहा अभी आप लोग भाषण मत करो, आपके जो माइक बनेंगे वो भाषण करे आपके लिए, आप नहीं करो, तब आपकी दो शब्द कहेंगे, आपकी वाणी शक्तिशाली होगी। तो ये बट्टी से हम शक्ति भर के जाएं, यही हम लक्ष्य रखें। इसीलिए मुख के मौन में तो रहना ही है, पर साथ साथ मन का मौन भी रखते हैं, रख रहे हैं ना, मन का मौन भी, कि केवल मुख का मौन, या वो भी थोड़ा लूज है, क्या कहेंगे, मुख का मौन के साथ साथ मन का भी मौन, तब ये शक्तिशाली मन बुद्धि होंगे और आत्मा उड़ेगी हल्की बन करके। ओम शांति।